नमस्कार दोस्तों, छिंबड़ा वाले सबका दोस्त योगेश कुमार। आज का विषय है G20 जैसे शिखर सम्मेलनों के लिए दिल्ली बंद कितना सही। G20 शिखर सम्मेलन के नाम पर इन मेहमान कशों से उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है, केवल इसीलिए कि दुनिया के रईसों को दिखाने के लिए सजाई गई दिल्ली की खूबसूरती में बट्टा न लगे। गरीब फटे या तिथले और बदबूदार शरीर के आसपास आने से कहीं विदेशी मेहमानों को नायक इस रूप में न देखा जाए। आज हमारे साथ लोहियावादी एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए। अनूप सर, मोबाइल एनिवे स्वागत सर आपका।
जी नमस्कार जी। बस
सर, क्या देख रहे हैं? G20 का जो सम्मेलन हो रहा है और G20 के कारण दिल्ली को 3 दिन के लिए बंद रखा गया है,
जी
इसको जनता किस रूप में देखे सर?
जी G20 जो है, आप देखेंगे कि एक 20 देशों का संगठन है। इस प्रकार के कई संगठन विश्व में काम कर रहे हैं और विश्व में बने हुए हैं। और इस साल जो अध्यक्षता मिली है वो अपने देश को मिली है, भारत को मिली है। और इसका क्रम यह है कि हर देश को 1 साल के लिए अध्यक्षता करने को मिलती है। 20 साल बाद पुनः अपने देश का नंबर आएगा अध्यक्षता करने के लिए। परंतु आप देख लीजिए कि लगभग लगभग 1 साल से अपने देश के अंदर G20 को लेकर कार्यक्रम चल रहा है। भारत की मीडिया और भारत की सत्ता इसको इस प्रकार से परोसने का काम कर रही है जैसे कि अभी अभी भारत का उदय हो रहा है और भारत के उदय में G20 का बहुत बड़ी भूमिका है, जबकि ये सच नहीं है। G20 से कुछ बहुत बड़ा भला हो जाए ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी हर काम को अपने पक्ष में लेने का काम करते हैं और वो आज के लिए काम नहीं करते, वो अपने इतिहास के लिए काम करते हैं। तो G20 के माध्यम से वो एक अपना इतिहास लिख देना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में जो G20 का सम्मेलन हुआ था वैसा सम्मेलन पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुआ था, कभी भारत में नहीं होगा। जहां तक रही जनता के परेशानी की बात, तो आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पॉलिटिकल समानता है। अब पॉलिटिकल समानता है तो इसके मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप विदेशी मेहमान चाहे अपने यहाँ के नेताओं के लिए आप पूरे जनता को परेशान कर दीजिए। जो खबर आ रही है कि दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के कॉलेज और दिल्ली को 3 दिन से बंद कर दिया गया है, वास्तव में यह विद्यार्थियों के और वहां के जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। परंतु दिल्ली की सरकार क्यों चुप है यह भी एक समझ से बाहर है। उनको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, हम चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेहमानों के आने जाने का एक रूट अलग तय कर लेना चाहिए कि भाई दिल्ली के जो एयरपोर्ट है, मेहमान एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहां से सीधे अपने कॉन्फ्रेंस हॉल के तरफ जाएंगे और वहां से रुकने का जो स्थान बनाएंगे वहां पे जाएंगे। उससे पूरे दिल्ली को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा में चारों तरफ से प्रबंधन किया गया है। ड्रोन के सिस्टम लगाए गए हैं, रोडों पर भी जहाजों को ऊपर से दिखाया जा रहा है कि सुरक्षा में कोई कमी नहीं की गई है। तो उसके मद्देनजर अगर उन्होंने दिल्ली को बंद किया है, प्रभावित करने का काम किया है, तो ये ठीक नहीं है। आम जनता उससे परेशान हो रही है, जबकि सुरक्षा तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, प्रशासन और सुरक्षा उसको दे रहा है, उसमें सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। परंतु उन लोगों के नाम पर विदेशी मेहमान आए हैं, भारत मेहमानों के मेहमान नवाजी वाला देश रहा है, इसका सत्कार हो रहा है और अच्छे से सत्कार होना चाहिए। जितना अच्छा सत्कार हो उतना अपने लिए बढ़िया है। परंतु उसके नाम पर पूरे दिल्ली को बंद कर देना यह आम जनता के लिए ठीक नहीं है, यह मेहनतकश लोगों के लिए ठीक नहीं है, मजदूरों के लिए ठीक नहीं है और जो डेली बेसिस पे काम कर रहे लोग उनके लिए ठीक नहीं है। दिल्ली का खर्चा आप देख रहे हैं कि एक दिन का कितना होता है, तो जो मजदूर है वहां पे वह क्या खाएगा क्या पिएगा, इसकी भी व्यवस्था और इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था, सत्ता को सोचना चाहिए था और तब जाकर के दिल्ली की व्यवस्था को बंद करना चाहिए था।
सर, क्या देखते हैं कि दिल्ली 3 दिन के लिए बंद कर दी गई है? चाहे
जी
दफ्तर हो, स्कूल हो, चाहे पान ठेले वाला हो, चाहे फुटकर विक्रेता हो, 3 दिन के लिए दिल्ली बंद रखना उसकी रोजमर्रा की आजीविका पर कितना प्रभाव देखते हैं? क्या कोरोना काल में जिस तरीके से लॉकडाउन झेलना पड़ा, क्या 3 दिन ऐसे ही कुछ बीतने वाले?
दिल्ली कोई मामूली शहर नहीं है। दिल्ली एक अंतरराष्ट्रीय शहर है, दिल्ली अपने देश की राजधानी है और वहां पे रहने वाले व्यक्ति का जो खर्चा है वो भी बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे महंगाई ज्यादा होती है। आप 3 दिन अगर वहाँ की सारी व्यवस्था को बंद कर देंगे तो उनके बारे में अपने को सोचना होगा, जो ठेला लगाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, जो फुटपाथ पर काम करते हैं, जो बेचते हैं वहां पर, उनके बारे में ना सोचा गया। बिना सोचे समझे निर्णय लेने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा करते। आप कोरोना काल का जिक्र किए, तो कोरोना काल में भी अगर जा करके आप देखेंगे योगेश भाई, तो प्रधानमंत्री जी बिना सोचे रेल को बंद कर दिए थे, जिससे अपने देश के मजदूरों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ है। पैदल चल गए, कितने लोगों का रास्ते में देहांत हो गया, कितने लोग खाए पिए दम तोड़ दिए, कितने लोग खाना के अभाव में कोरोना से प्रभावित हो गए। और वही दशा आज ये दिल्ली का करके रखे है कि दिल्ली को बंद कर दिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लोग दिखाई देते हैं, नीचे के लोग उनको दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो बंद किया है, एक प्रकार से जीविका के ऊपर चोट किया है और साधारण व्यक्ति के मानवाधिकार के ऊपर उन्होंने हमला किया है। यह अधिकार नहीं है कि वो बंद कर देंगे, परंतु बंद करके उन्होंने व्यक्ति के जीविकापार्जन की जो समस्या है उसको बढ़ाने का काम किया, जबकि चाहिए था कि वो पहले हल कर ले, लेकिन हल नहीं किए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी बिना समस्या को हल किए एक नई समस्या को जन्म देते हैं और उसको भी वो इवेंट के रूप में मनाने की कला जानते हैं, उसमें भी वो फोटो खिंचवा लेते हैं और उसमें भी उनके फोटो बड़े बड़े छप जाते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जो है तो नीचे के लेवल पे काम नहीं करते हैं और उनको नीचे के लोग नहीं दिखाई देते, उनको तो अपना आने वाला इतिहास के लिए वो काम करते हैं और उसी में वो समझते हैं कि मैं इतिहास रच रहा हूँ।
सर क्या देखते हैं, विश्व की सभी बड़ी बड़ी इकोनॉमी वाले देश इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं सर, इसमें सर भारत का जो आम जनता है वह अपने आप को कहाँ खड़ा देख रही सर, भारत की जनता?
G20 जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे संगठन है जो विश्व में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या लोगों की बेरोजगारी, लोगों की अशिक्षा, लोगों के बीच से असमानता, संकीर्णता, सांप्रदायिकता, राजनीतिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जातीय ध्रुवीकरण की समस्या हल हुई है? नहीं हुई है। विश्व में इन समस्याओं को हल करने के लिए एक संगठन बना UNO। आज UNO की दशा क्या है योगेश भाई, आप जानते हैं, आप पत्रकार है, कि UNO के अंदर 5 देशों को पूरी ताकत दे दी गई है और वही 5 देश UNO को चलाते हैं और उन्हीं 5 देशों के कहने पर UNO चलता है, जिसको वीटो पावर कहते हैं। जबकि एक तरफ जो G20 के नेता लोग जुटे हैं, ये लोग कहते हैं कि हम जनतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। तो आप इनसे पूछिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जनतंत्र की स्थापना कैसे होगी जब आप UNO के अंदर वीटो पावर लाए हैं, कुछ देशों को अधिकार दे रहे हैं तो बाकी देशों को अधिकार नहीं दे रहे, तो जनतंत्र की स्थापना कैसे हो सकती है? जनतंत्र का मतलब होता है कि सभी देशों के अंदर समता हो और जो अवसर हो सभी लोगों के पास हो और सारे काम सहमति से हो। परंतु UNO में तो इन 5 देशों की भूमिका होती है, इन 5 देशों के जो कहते हैं वही होता है। तो इससे बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़ा भारत के आर्थिक व्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, या वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं दिखाई देने वाला है। इससे बहुत बड़ा संशोधन आ जाए, बहुत बड़ा उदारी, बहुत बड़ा विकास हो जाए, यह संभव, यह दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि आप देख लीजिए कि साल भर से यहाँ पे चल रहा है और साल भर से कितने पैसे भारत सरकार के खर्चा हो रहे, तो पैसे आ कहाँ से रहे? पैसे तो आम जनता के ही है ना। जितना पैसा G20 पे खर्चा हो रहा है, उतने पैसे के अंदर अगर रोजगार के कोई साधन जुटा दिए गए होते, अस्पताल खोल दिए गए होते, विश्वविद्यालय खोल दिए गए होते, तो 2-3 प्रकार की समस्याएं देश के अंदर हल होने लगती और बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, नागपुर का। नागपुर में भी G20 का सम्मेलन हुआ था, वहां पे उसके कार्यक्रम थे 2 दिन के, 200 करोड़ रुपया नागपुर में आया। और हुआ क्या था कि जो नाले थे उन नालों को सरकार ने टीन लगा करके पटवा दी कि विदेशी मेहमानों को दिखाई न दे। जगह जगह झंडा लगा दिया गया 10-20 देशों का, जगह जगह पे फुलझड़ी लगा दी गई। बताइए कि इससे आम जनता के जीवन में क्या बदलाव आया, आम जनता की दिनचर्या में क्या बदलाव हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अगर उसी पैसे का उपयोग कर लिया गया होता और किसी काम में लगा दिया गया होता तो समझ में आता कि चलो G20 का सम्मेलन हो रहा है, उसके माध्यम से अपना देश सुधर रहा है, परंतु यह दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है।
सर क्या देखते हैं वैश्विक पटल पर, दिल्ली में सभी विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी चिंता हमें आने वाले दिनों में और अभी भी आ रही है, जलवायु परिवर्तन जी। सर क्या कहना चाहेंगे जो भी मेहमान आ रहे हैं अपने यहाँ पे, ऐसा कोई एक कदम उठाए कि जलवायु परिवर्तन में सकारात्मक भूमिका निभा सके और जलवायु नियंत्रण के लिए एक मुद्दे एक मंच पर एक साथ आ सके।
देखिए, अभी जो G20 सम्मेलन चल रहा है, इसका नारा है वन अर्थ, उन्होंने दिया है एक पृथ्वी।
जी
योगेश भाई, थोड़ा सा आप पहले जाकर के झांकेंगे तो एक सम्मेलन हुआ था 1900 जेनेरिया सम्मेलन, उसके बाद दूसरा सम्मेलन हुआ क्वेटा सम्मेलन, इसी पर्यावरण और इसी जलवायु परिवर्तन और धरती के गर्माहट को लेकर। क्वेटा सम्मेलन बेस सम्मेलन है पर्यावरण सम्मेलनों का। उसमें यह तय हुआ कि जो अमीर देश है, अमेरिका जैसे जो देश है, अपने यहाँ कार्बन के उत्सर्जन की कटौती करेंगे। मीटिंग में अमेरिका ने इस बात को मान लिया, उस समय उसके शायद राष्ट्रपति थे बुश साहब, उन्होंने मान लिए। और जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने उपभोग के स्तर में कटौती नहीं कर सकते। उसमें यह भी तय हुआ था कि जो गरीब देश है उनको पैसे दिया जाएगा, उनको ग्रीन टेक्नोलॉजी दी जाएगी ताकि वह अपने यहाँ उत्सर्जन को रोक सके, तकनीकी माध्यम से कुछ विकास काम कर सके। परंतु अमीर देशों ने आज तक वह देने का काम नहीं किया है। आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि इससे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप देख लीजिए कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले देश कौन है। सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले देश तो वही है ना जिनके यहाँ उपभोग का स्तर बहुत ज्यादा है, और अमेरिका इसमें मास्टरमाइंड है। तो इनके जुटने से अगर यह आशा कर लिया जाए कि पर्यावरण सुधर जाएगा, तो पर्यावरण सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि इनके रहन सहन ही आप देख लीजिए, इतने लोग जुटे हैं तो क्या यह पर्यावरण को बचाने के लिए जुट रहे हैं? और क्या जो दिल्ली में इनका सम्मेलन चल रहा है पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं? चांदी के थाली और सोने के थाली में इनको खाना परोसा जा रहा है। भारत की पद्धति रही है कि केले के पत्ते पर खिलाए होते, इनको दोनों पत्तल में खिलाए होते तो बढ़िया रहता है। एक तो अपना स्वदेशी का प्रचार भी होता और दुनिया में संदेश जाता कि भारत गांधी का देश है, और आज भी गांधी का देश है, वो लोग गांधी को मानते हैं। परंतु नहीं, यह तो राजा और महाराजाओं की पद्धति और संस्कृति को अपना लिए है। तो राजा और महाराजाओं की पद्धति और संस्कृति को जब तक आप अपनाए रखेंगे, पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती। और केवल बोलने से पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती, केवल कपड़े बदल लेने से पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती है, एसी रूम में रहने से पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती है, और 8-8 हजार करोड़ की हवाई जहाज उड़ा देने से पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती है। आप देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय जिस जहाज से चलते हैं उसका खर्चा क्या है, जिस गाड़ी से चलते हैं उसका खर्चा क्या है। तो इन सबसे पर्यावरण नहीं बचने वाला। पर्यावरण तो बचेगा गांधी के रास्ते से, पर्यावरण तो बचेगा कि जब अमेरिका और G20 के देश कहे कि आज के बाद हम अपने यहाँ परमाणु बम नहीं बनाएंगे, आज के बाद हम अपने यहाँ हथियार नहीं बनाएंगे, परंतु क्या यह देश कोई कहने के लिए रेडी है? नहीं रेडी है। तो इनके आने और जाने से पर्यावरण बचने वाला नहीं है। यह तो एक प्रकार के जलसा करते हैं, और जलसा में खाना पीना खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और फिर चले जाते हैं। और पुनः 20 साल बाद भारत में सम्मेलन होगा, अगले साल बाद पुनः किसी देश में सम्मेलन होगा, तो ये तो चलता रहेगा काम। लेकिन नेता जब तक अपने दिनचर्या में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक न तो पर्यावरण बचेगी और न ही गरीब व्यक्ति के स्थिति में सुधार होगा।
जी, तो ये थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से G20 जैसा शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली बंद कितना सही, इस विषय पर मोबाइल वाणी के साथ जानकारी साझा की। डॉक्टर साहब, मोबाइल वाणी का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई, आपको भी
छिन्नमड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।